Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, बचपन में आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक बहुत ही प्रसिद्ध चोर था, पूरे ही शहर में तहलका मचा रखा था उसने। एक बार वो पकड़ा गया, राजा ने उसे फांसी की सज़ा दी। और हमारे यहाँ ये परंपरा है कि जब फांसी की सज़ा होती है तो उसकी जो अंतिम कामना है ये पूछी जाती है। उस चोर से भी पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम चाहना क्या है, कामना क्या है, तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। उसकी माँ को बुलाया गया, उसने कहा मैं अपनी माँ के कान में कुछ कहना चाहता हूँ। माँ नज़दीक आई, जैसे ही नज़दीक आई तो उस चोर ने अपनी माँ के कान काट लिए। जब ये पूछा गया कि तुमने अपनी माँ के कान क्यों काट लिए, अब तो फांसी होने वाली है, तुमको तो अच्छे से मिलना चाहिए था, उसने कहा कि माँ ने ही मुझे चोर बनाया। बचपन में जब पहली बार मैं कुछ चुरा के लाया था तो माँ ने मुझे डांटा नहीं, फटकारा नहीं, लेकिन कहा कि कोई बात नहीं, रख लो। और जब जब मैं ले के आता था वो रख लिया करती थी। उन्होंने मुझे ये सीख नहीं दी कि ये गलत कार्य है और तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो ये संस्कार चूँकि वहीं से पड़े थे, इसीलिए मैंने अपनी माँ के कान काट लिए। तो कल मित्रों हमारी चर्चा हो रही थी कि माँ शिक्षा भी देती हैं, सीख देती हैं, जिससे हम महानता की ओर बढ़ जाते हैं। और यदि वो कहीं ऐसी सीख हमें नहीं देती हैं, हमारी बुराइयों को कहीं दबाने लगती हैं, छिपाने लगती हैं, तो कहीं ना कहीं वो बुराइयां हमारी बढ़ती चली जाती हैं। इसीलिए पेरेंट्स की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है कि अपने बच्चों को सही क्या है, गलत क्या है, ये सिखाएं भी, और साथ ही उन्हें ये सीख देने के साथ साथ ये प्रेरणा भी दें कि किस चीज़ का परिणाम क्या होगा, तो सचमुच बच्चों का भविष्य बहुत सुंदर होगा, समाज का भविष्य बहुत सुंदर होगा। ऐसी सुंदर प्रेरणा भरी बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं, अभिनंदन करते हैं प्रातः जी का। प्रातः जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
शुक्रिया।
कल मैंने कहा था प्रातः जी कि मेरी मरम्मत हुई तो मेरी राह बदल गई, जैसे एक विचार बदल गया और लगा कि नहीं, जीवन कुछ और होना चाहिए। लेकिन वहीं यदि बात कुछ और होती, उस बात को शायद दबा लिया जाता। माँ कई बार प्रेम में ये करती है कि चलो बच्चा ही तो है, ठीक हो जाएगा, और उस कमी को उस समय सजा नहीं देती या सिखाती नहीं, तो शायद वो एक कड़ा संस्कार बनता जाता है और आगे चल के उसे बदलना मुश्किल हो जाता है।
बिल्कुल, ये चोर की बात ही बिल्कुल ठीक है
जी।
माँ ने उसको चोर बनाया, इसलिए माँ को भी सजा मिलनी चाहिए थी, उसने सजा दी। और आपकी मरम्मत हुई तो जैसे पत्थर की मरम्मत होते होते वो मूर्ति बन जाती है, तो इस मरम्मत ने आपको मूर्ति बना दिया, तो माँ की शुक्रगुजार आप भी
जी।
और चोर को उसने चोर बना दिया, उसको फांसी लगी, दोनों का जीवन बेकार हुआ। इसलिए ये सत्य है कि माँ बहुत समझदारी से बच्चों को सीख दे। माँ प्रथम गुरु होती है, माँ को अच्छे संस्कार बच्चों में डालने हैं। वो बुरा कर्म करके आता है तो तुरंत सजा देनी चाहिए। ऐसा हमने भी कई बार सुना, हमारे भी एक रिलेटिव थे, उसका लड़का वो ले आया, कलर बॉक्स होता है बच्चों के पास छोटा सा, उठा के ले आया किसी का, और कह दिया कि दिया है मुझे जरा थोड़ा सा यूज करने के लिए। लेकिन जब रियलिटी पता लगी तो उसका फादर उसको वहीं से मारते हुए उसके घर ले गया जिस बच्चे का लाया था, और कहा इसको वापिस दो और पैर छुओ इसके। पिटाई भी हुई, पैर भी छुआ, और प्रतिज्ञा की आज के बाद नहीं करूँगा। तो वो लड़का अब तो बहुत बड़ा है
जी जी।
तो याद करता है कि इसने ऐसी सीख दे दी कि जीवन में फिर हमने कभी चोरी नहीं की
जी जी। भ्राता जी, कुछ दिनों पहले हम लोग कल्याण और अकल्याण की बात कर रहे थे, तो शायद ये तत्कालीन अकल्याण दिखाई देता है बच्चों को कि हमारी बहुत मरम्मत हो रही है और हमारी बात को समझा नहीं जा रहा है, लेकिन शायद दूरगामी जो कल्याण है वो पेरेंट्स ही देख पाते हैं, बच्चे नहीं देख पाते।
इससे ये स्पष्ट होता है कि इन सब अच्छी चीज़ों में मनुष्य का कल्याण होता है, भले ही मारपीट भी हो, लेकिन बच्चे को इसको बुरा न मानकर अपने लिए बहुत कल्याणकारी समझना चाहिए।
जी जी जी। प्रातः जी, कुछ SMS आए हैं, मैं आपको उनकी ओर लिए चलता हूँ। आज हमारे पास बहुत सारे SMS भी हमारे दर्शक भेजते रहते हैं। पहला SMS प्रातः जी आया है मिसेज एस पॉल का। ये कहती हैं कि मेरा 9 साल का बेटा है जो मेंटली हैंडीकैप्ड है। कई बार वो बहुत अग्रेसिव हो जाता है, चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगता है और बहुत ज़्यादा अशांत हो जाता है, दूसरों को भी अशांत कर देता है। मैं कैसे अपने बच्चे की मदद कर सकती हूँ और साथ ही साथ किस प्रकार से उसको मेंटली ठीक भी किया जा सकता है? दवाइयाँ तो चल रही हैं लेकिन वो इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। 9 साल का है बेटा।
ऐसे केसेस बहुत आते ही रहते हैं, और दवाइयाँ तो देखिए कारगर सिद्ध नहीं होती, ये तो बिल्कुल सत्य बात है
जी।
तीन चार चीज़ें अपनानी पड़ेंगी इनके लिए। एक तो ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक विजन बनाए कि मेरा बच्चा ठीक होकर स्कूल में पढ़ने जा रहा है, बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरह से खेल कूद रहा है, आंगन में खेल कूद कर रहा है, बिल्कुल जैसे एक अच्छे बच्चे होते हैं परफेक्ट इंटेलेक्ट वाले वैसा वो कर रहा है, ये विजन बनाए। और इसके लिए कर ले कि तीन मास में मैं ऐसा देख रही हूँ अपने बच्चे को, पहली एक चीज़। तो सबकॉन्शियस माइंड उसका जागृत रहता है उस टाइम। और दूसरे के लिए भी ऐसी विजन बनाने से ऐसा भी प्रत्यक्ष में होता है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा पावर है। तो एक तो विजन बनाएंगे तीन मास के लिए, दूसरा उसके ब्रेन को एनर्जी देनी है रोज, क्योंकि बच्चे बहुत एग्रेसिव होते हैं, इसमें उनको गुस्सा बहुत आता है। अगर वो सिर पे हाथ न रखाने दे तो जब वो सोया हो उसके सिर से थोड़ा दूर हाथ रख सकते हैं एक इंच। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ ये अभ्यास करके तीन बार दोनों हाथ उसके सिर पे रखते हैं, 10 मिनट ऐसा करेंगे, 10 बार सवेरे 10 बार शाम को, तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। पानी भोजन चार्ज करके पिलाएं, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ इस सोमान से। और क्योंकि ये बच्चा अपने साथ कर्मों का बहुत निगेटिव खाता लेकर आया है कि बचपन से उसको सुख नहीं है, तो इसके लिए 1 घंटा योगदान भी करें ये 3 मास तक
जी।
ये 4 चीजें अपनाएंगी तो निश्चित रूप से जैसे आजकल कई केसेस में देखा गया है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी 9 साल का है तो अभी उसकी जो ग्रहण करने की शक्ति है वो बहुत पावरफुल है, बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाएगा।
व्रता जी, क्या कुछ ऐसे केसेस आपके पास आए थे जिनमें आपने ये अभ्यास कराया और वो कम्प्लीटली जो मेंटली रिटायर्ड बच्चे थे वो ठीक हो गए?
बिल्कुल, ऐसे केस आते रहते हैं और माँ बाप भी बहुत सिंसियरली ऐसे अभ्यास करते हैं, माँ खास रूप से, और ऐसे बच्चे ठीक होते हैं।
जी जी जी, तो इन्हें भी उम्मीद रखनी चाहिए।
नहीं, पूरा इट्स ट्रुथ, ट्रुथ है कि बच्चा 3 मास में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, बस इनको सिंसियरली।
क्योंकि एक विचार उनके मन में ये भी आ जाता होगा ब्रता जी कि क्या ये बच्चा जीवन भर ऐसा ही रहेगा, इसका भविष्य क्या होगा, या क्या हमें जीवन भर ऐसे ही से संभालना होगा, ये वाला जो विचार है बहुत भारी कर देता है।
नहीं, यही विचार उनको रखना ही चाहिए कि इस विचार के कारण अब हमें इसे ठीक कर लेना है ताकि इसका जीवन भी ऐसा ना रहे और हम भी इसे क्यों जीवन भर संभाले, ये हमें संभाले बड़ा होकर, और इसका भविष्य बहुत सुंदर हो, ये अच्छी पढ़ाई करे और अच्छा कोई काम करे। तो इस संकल्प को रखते ही 3 मास जैसे ये डिवोट कर दें उसके लिए, समर्पित कर दें
और ये सारे अभ्यास करते
ये चारों अभ्यास करें तो नो डाउट वो ठीक हो जाएगा।
चलिए, हमारी शुभकामना रहेगी ब्रता जी कि जल्दी से जल्दी बच्चे अच्छे हो जाए। दूसरा हमारे पास SMS आया ब्रता जी, ये राजस्थान से आया हमारे पास राजेंद्र जी का। ये कहते हैं कि मेरी दुकान नहीं चल रही है, मैंने बहुत उपाय कर लिए हैं पर कोई फायदा नहीं हुआ है, कृपया कोई समाधान बताएं। मैं भी कहीं गया था ब्रता जी, तो अब लोग मुझसे भी प्रश्न पूछने लगे हैं कि ऐसे में क्या करें। मैंने कहा वो तो ब्रता जी निदान बताते हैं, मैं तो समस्या वाला हूँ। तो उन्होंने भी कहा था कि उनकी क्रॉकरी की दुकान है, कभी तो चलती है, 5-7 दिन चला, उसके बाद 10-15 दिन 20 दिन बंद हो गया, फिर 5-7 दिन चला। तो वो कह रहे थे कि ऐसा क्यों होता है, क्या मुझे बिजनेस चेंज कर लेना चाहिए, विचार चलने लगता है।
देखिए, इसमें कभी कभी मनुष्य के ऊपर कोई विघ्न भी काम करता रहता है, तो अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो उसको एक 21 दिन की विघ्न विनाशक भट्टी कर लेनी है
जी।
1 घंटा रोज योग करेंगे और योग से पहले 5 बार ये 2 स्वमान याद करेंगे, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ विघ्न विनाशक हूँ। इससे जो मार्ग में आया हुआ विघ्न है वो हट जाएगा और लाइन बहुत क्लियर होगी। अब इसकी जो दुकान नहीं चल रही, पहला काम तो इनको करना है कि जैसे ही दुकान खोले सवेरे इनको अच्छा योग करना चाहिए, और जैसे ही घर से ये निकल रहे हैं तो अभ्यास करके निकले कम से कम 3 बार, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब दुकान खोले तो बाबा का आह्वान करे अपनी दुकान में, और दरवाजा खोलते ही फिर वही सुंदर संकल्प करे, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और जब बैठे दुकान पर तो जो भी सामने से गुजर रहे हैं लोग उन्हें आत्मा देखे और अभ्यास करता रहे, मैं एक महान आत्मा हूँ, ये अभ्यास करे। इसके अलावा जो हम एक विजन की बात करते हैं ना, वो बहुत सुंदर है। सवेरे उठते ही ये 7 दिन तक एक सुंदर विजन बनाए कि मेरी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है, देखे जैसे सीन देखे कि हम बहुत बिजी हो गए हैं, ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है, इसका इफेक्ट, योग अभ्यास का इफेक्ट बहुत अच्छा होगा और इनकी दुकान चलेगी, क्योंकि ऐसे अनुभव तो बहुतों के आ चुके हैं
जी।
छोटे छोटे अभ्यास करने से किसी के पास ग्राहक नहीं आते थे, अब ग्राहक भरपूर आने लगे, किसी को और कोई बाधाएं आती रहती थी, विघ्न विनाशक भट्टी की वो सब बाधाएं हट गई, पड़ोसी वाले भी जो और थे वो भी कहीं ना कहीं विघ्न डालते रहते थे, वो भी गुड फ्रेंड बन गए। तो ये अभ्यास करने से निश्चित रूप से रिजल्ट बहुत अच्छा निकला।
मतलब अपनी दुकान बदलें या फिर अपना स्थान बदलें या बिजनेस बदलें, उससे पहले 21 डेज का अच्छा योगा अभ्यास कर लें, रिजल्ट देखें, उसके
पश्चात। क्योंकि बदलना हर एक के लिए संभव नहीं होता है
जी, जी,
किसी के पास इतने पैसे नहीं होते। अब किसी की दुकान ही बहुत अच्छी जगह हो, वो बदल के कहीं किनारे पे ले, वो भी संभव नहीं होता। इसी सिचुएशन को ठीक कर लिया।
कई लोग ये सोचते हैं व्रता जी कि किसी ने नज़र लगा दी है या किसी ने कुछ करा दिया है, क्या ऐसा भी कुछ होता है कि नज़र लग गई हमारी दुकान को या किसी ने कुछ करा दिया?
नज़र तो नहीं, आजकल तांत्रिक इफेक्ट लोग करा देते हैं ये सब, बस उससे भी ये मुक्त हो जाएंगे इन अभ्यासों से। एक बात आपने पूछी, तो जिसको भी ऐसा लगे वो अपनी दुकान में रोज एक बार पानी चार्ज करके छिड़क लिया करें। पानी को दृष्टि दें, लोटे में पानी लें, 21 बार संकल्प कर दें मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ
जी,
और फिर छिड़क दें जहाँ तहाँ। इससे कोई बैड एनर्जी वहाँ आ गई है, और भी कई आती हैं, भटकती आत्माओं ने किसी ने वास कर लिया हो, ये सब खत्म हो जाएगा
बिल्कुल। और बता जी, जो आप 21 डेज योग की भट्टी की बात करते हैं, तो ये क्या उन्हें अपनी दुकान में बैठ के करना चाहिए या घर पे कर सकते हैं?
नहीं, ये कहीं भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, सेवा केंद्र में भी, दुकान में भी
जी,
कहीं भी। वह संकल्प कर लें कि ये जो जीवन में विघ्न आया ये नष्ट हो जाए
बिल्कुल। चलिए राजेंद्र जी, आपकी दुकान अच्छे से चल जाए ऐसी हमारी शुभकामना है, और जब अच्छे से चलने लगे तो हम हमेशा कहते हैं कि आप मिठाई जरूर भिजवा दें समाधान परिवार के लिए। राजेंद्र जी, अगला हमारे पास SMS आया है, ये पॉपी विश्वास जी ने भेजा है कोलकाता से। ये कहती हैं कि लास्ट 1 मंथ मैं राजयोग सेंटर पे जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड की एक दुकान है, इनकी भी दुकान की समस्या है, लेकिन अब वो बंद है, अब वो जॉब कर रहे हैं, हमारी कुछ कर्ज हैं इसलिए हम वो दुकान अब बेचना चाहते हैं, बहुत लोग खरीदने के लिए आए लेकिन पता नहीं लास्ट मोमेंट पे क्या हो जाता है कि वो कैंसिल हो जाता है। इस वक्त हम लोग बहुत आर्थिक तंगी की स्थिति में हैं और चाहते हैं कि हमारी वो दुकान बिक जाए ताकि हमारी ये आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, कृपया कुछ समाधान बताएं।
बिल्कुल, ये समस्या बहुतों के पास आती है
जी।
तो सवेरे उठ के 7 बार ये संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, रोज, क्योंकि दुकान निकलने में कुछ विघ्न काम कर रहा है। फिर एक आधा घंटा रोज योग कर ले कुछ दिन तक, 21 दिन का लक्ष्य बना ले, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, संकल्प कर लें अब ये दुकान जल्दी ही निकल जाए, सेल हो जाए। आधा घंटा योग करेंगे, संकल्प करेंगे तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। इसके अलावा रोज सवेरे जैसे ही आँख खुले, हम हमेशा सिखाते हैं कि सवेरे के टाइम सबको सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव रहता है, खास 10 मिनट, उसमें भी खास पहला संकल्प, इसलिए उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करके संकल्प कर दें, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं कर्ज मुक्त हूँ। फिर दोबारा, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, कर्ज मुक्त हूँ, ऐसा 5 बार कर ले तो ये सबकॉन्शियस माइंड क्योंकि जगह है, ये भी बहुत इफेक्टिव होगा
जी। जी जी भाई जी, कही हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है फंसी रहती है अलग अलग जगहों पे, और उनका ध्यान ज़्यादातर इसी चीज़ पे लगा हुआ होता है, वो शायद इन अभ्यासों पे उतने फोकस नहीं हो पाते। तो कईयों का ये भी प्रश्न होता है कि यदि हम कर रहे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा है तो भी क्या हमें सफलता प्राप्त होगी?
कम होगी, लेकिन अगर मन लगा दें, थोड़ा सा उधर से अपने को डिटैच करें कुछ समय कि ठीक है ये समस्या तो है ही, अब मुझे इसका समाधान करना है। जैसे कोई बीमार व्यक्ति हो जाए और वो बहुत तड़प रहा हो लेकिन उसको दवाई देने वाले परेशान हो के दवाई दें ही नहीं, ये तो बहुत परेशान है, हम भी इसे देख देख के बहुत परेशान हो गए, हम तो दुखी हो गए, पता नहीं ये न जीता न मरता, क्या करें, ये नहीं, उनको दवाई देनी पड़ेगी ना। ऐसे ही विचार कर लें कि जो समस्याएं हैं इनका समाधान अब मुझे करना है, अच्छी तरह करना है, यही संकल्प यदि ये करेंगे, रात को सोते हुए भी ये संकल्प करें कि कल सवेरे उठ के मुझे अपनी समस्या समाधान के लिए बहुत अच्छी साधना करनी है, इस विश्वास के साथ कि साधना से समस्या समाप्त हो जाएगी, तो इससे जो व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, जो मन नहीं लग रहा, वो समाप्त हो जाएगा और फिर अच्छी एकाग्रता हो जाएगी। एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है। ये संकल्प सच्चे मन से किए जाते हैं तब सबकॉन्शियस माइंड इन्हें ग्रहण करता है।
बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है जी कि मन नहीं लगता है, ना भी लग रहा हो तो भी कम से कम लगाने की कोशिश करें और करते तो रहें, थोड़ा भी करेंगे तो अभ्यास से जरूर उन्हें सफलता प्राप्त होगी। प्रता जी अगला हमारे पास इसी में आया है, ये कहते हैं ओम शांति भाई जी, मुझे समाधान प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। भाई जी मेरे माइंड में अजीब सा खालीपन रहता है जिससे मेरे सर में दर्द रहता है और मैं कोई डिसीजन नहीं ले पाता हूँ। जब भी कोई निर्णय लेता है तो मैं उसमें अपने आप को असमर्थ महसूस करता हूँ। इसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा असफलता भी मिलती है और साथ ही मेरे अंदर चिड़चिड़ापन भी आने लगा है। तो मेरी बुद्धि सही सही निर्णय ले और ये जो खालीपन है बुद्धि का वो दूर हो, मैं पॉजिटिव हो सकूँ, उसके लिए कोई उपाय बताएं।
पहली चीज तो ये फिजिकली अपने अच्छे भोजन पर और अच्छी नींद पे ध्यान दें। कभी कभी ऐसा होता है नींद मनुष्य की फ्रेश नहीं होती, नींद में वो बहुत स्वप्न देखता है या चिंताएं बनी रहती हैं, या भोजन वो अच्छा नहीं कर रहा है या भोजन अच्छा हजम नहीं हो रहा है, तो उसको ब्रेन की बहुत सारी थकान जैसी महसूस होती रहती है। तो इससे बचने के लिए पहली चीज तो ये करें। दूसरा एक सिंपल विधि जो हम सिखाते हैं लोगों को, सवेरे उठ के ही 108 बार लिखेंगे मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, ताकि ब्रेन को शक्तियों के वाइब्रेशंस जाएं। सोने से पहले मैं एक महान आत्मा हूँ 108 बार, ताकि ब्रेन को प्योर वाइब्रेशंस जाएं। ये दो काम इन्हें करना है। और नेक्स्ट चीज ये है कि ये अपने ब्रेन को एनर्जी दें, जो हम विधि कर बताते ही आ रहे हैं। 10 मिनट बिल्कुल यहाँ हाथ रख दें और विचार करें कि मेरा ब्रेन बहुत एनर्जेटिक हो रहा है, साथ में पानी चार्ज करके पिए। इतना थोड़ा सा करने से जो इनको खालीपन सा है, ऐसा लगता है ब्रेन बहुत वीक हो चुका है या कोई निर्णय इनके हाथ में जैसे नहीं रहा है, गड़बड़ हो रही है, तो ब्रेन एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक से काम करने लगेगा और फिर इनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और निर्णय भी प्रॉपर।
तो सभी लोग क्या रहते हैं जी अभ्यास करें, क्योंकि मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोगों में ये जो अनिश्चितता की स्थिति है वो बनी ही रहती है कि मैं ये करूं या ये करूं या ये करूं, ज़्यादातर ये देखने में आता है। एक विशेष बात पूछना चाहूँगा प्रता जी, यदि हमें कोई निर्णय लेना हो तो क्या कोई विशेष ऐसा अभ्यास है कि हम वो यदि अभ्यास कर लें फिर हम यदि कोई निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय सही हो?
देखिए एक तो समय पहली बात
जी,
ये जो इम्पोर्टेंट निर्णय जीवन के होते हैं ये उस टाइम तो लेने नहीं चाहिए जब मन विचलित हो, मन परेशान हो, ऐसे ही मनुष्य दुखी हो निर्णय ले बैठे, उसे गुस्सा आ रहा हो निर्णय ले बैठे, वो गलत होगा। सवेरे जब चित्त शांत है तब बुद्धि परफेक्टली काम करती है, तब अच्छी तरह विचार करें। उससे पहले 7 बार अभ्यास कर लें, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, मेरी निर्णय शक्ति परफेक्ट है, और हो सके तो थोड़ी देर मेडिटेशन भी कर लें ये सम्मान लेकर, और फिर निर्णय लें, तो निर्णय बिल्कुल यथार्थ होंगे, कभी कोई गड़बड़ होने की गुंजाइश नहीं रहेगी।
बिल्कुल। चलिए प्रता जी, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
बिल्कुल, ये सबके लिए है। और आजकल ब्रेन की ये जो ये खालीपन जैसा है ना, ये बहुत हो गया, टेंशन बहुत, लोगों को ये पता नहीं कि टेंशन से ब्रेन की एनर्जी नष्ट हो रही है, किसी को गुस्सा आ रहा है, गुस्से से ब्रेन की एनर्जी नष्ट हो रही है, किसी के संकल्प बहुत चल रहे हैं उसे ब्रेन की एनर्जी नष्ट हो रही है। तो ये वैसे भी कलयुग के अंत में बहुतों के ब्रेन अति कमजोर हो चुके हैं, इसलिए ब्रेन को एनर्जी देना, पानी चार्ज करके पीना, इसमें 10-12 मिनट रोज सबको लगाने ही चाहिए, जो हेल्दी है उनको भी।
बिल्कुल, ताकि उनका ब्रेन भी पावरफुल हो और निर्णय सही सही हो। प्रता जी अगला हमारे पास गुजरात से आया है SMS, ये कहते हैं प्रता जी मेरा नाम विवेक है, 18 साल का हूँ। ब्रह्मा कुमारीज कहती हैं कि सृष्टि का जो ये चक्र है फिर से रिपीट होगा, तो क्या फिर से मेरा बर्थ मेरे इसी पार्ट यानी विवेक के रूप में ही होगा, और अभी मेरे साथ जो भी हो रहा है क्या वही वही घटनाएं फिर से रिपीट होंगी?
देखिए विवेक को मैं ये कहूँगा, इनके पास सद्विवेक तो है ही, ये बात स्वयं भगवान ने बताई है। और इस वर्ल्ड को, इस सृष्टि चक्र को एक रूप दिया है, एक फिल्म की तरह, जैसे मान लो कि इन्हें 2.5 घंटे की फिल्म शूट कर ली, अब वो एक बार देखाया व्यक्ति कि हाँ भाई फलानी एक बिल्डिंग थी वो गिर गई, अब वो जब दोबारा जाएगा देखने तो बिल्डिंग खड़ी दिखाई देगी, वो ये तो नहीं सोचेगा कल तो देख के गया था गिर गई, आज फिर कैसे खड़ी और फिर गिर गई। वो कहेगा ये क्या हो रहा है, वो उसे पता है ये फिल्म शूट की हुई है और जब जब हम इसे देखने जाएंगे बिल्कुल वही वही हमें दिखाई देगा, ये हूबहू रिपीट होगी। ये संसार भी एक फिल्म की तरह है, बस इसमें ये जरूर विवेक ही रहेंगे, इसी घर में जन्म होगा, हो सकता है ये घर इनको अच्छा ना लगता हो, इसके फ्रेंड का घर कुछ ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन सब कुछ अच्छा हमारे साथ, इसी तरह की इनकी एजुकेशन होगी, सब कुछ वैसा ही होगा। ये सत्य है कि इस वर्ल्ड ड्रामा का हर सेकंड का हर सीन हर 5,000 साल के बाद हूबहू रिपीट होता है।
कई लोग एक प्रश्न उठाते हैं बेटा जी, मैं पहले भी शायद आपसे पूछ चुका हूँ, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि यदि ये फिक्स है तो फिर मेरे पुरुषार्थ करने का क्या मतलब है, यदि पुरुषार्थ भी मेरा फिक्स ही है तो वो तो ड्रामा मुझसे करा लेगा, क्यों मैं इतनी मेहनत करूं, क्यों मैं अपना माथा खराब करूं?
ड्रामा भी कराता है लेकिन मेहनत भी उसको लगती है जिसको ये पता नहीं है, जो इस स्थिति में स्थित नहीं है कि ये तो होने वाला ही है। मान लो किसी को ये है कि उसने कठिन काम अब उसके सामने है, अब उसको लग रहा है बहुत कठिन काम है, लेकिन उसको अगर याद आ जाए कि ये तो कल पहले मैंने सहज भाव से पूर्ण कर लिया था, तो अब वो सहज भाव से उसे पूर्ण कर लेगा। तो ये स्मृति तो मनुष्य को और सहज बना देती है। पुरुषार्थ भी ड्रामा में फिक्स है, वो भी होगा ही, इसका अर्थ ये नहीं कि हम करें नहीं, होगा तब जब हम करेंगे, क्योंकि कल पहले भी हमने किया था तो रिपीट कंप्लीट होगा, करना भी और उसका परिणाम भी।
लेकिन मान लीजिए मैंने किया था तब तो मैं करूंगा ही, लेकिन अब मैं यदि सोच लूं कि नहीं ये यदि होना होगा तो होगा, अब मैं बैठ
जाता हूं। अगर इन्होंने कल पहले ऐसा सोचा होगा तो ये अब भी ऐसा ही सोचेंगे, फिर तो ये हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। पर इन्हें क्या पता है कि कल पहले ये कैसे हुआ था, ये तो किसी को पता नहीं, क्योंकि मनुष्य को पता नहीं कि नेक्स्ट मोमेंट क्या था, आज का शाम तक का दिन कैसा बीता था कल पहले, या कल का आने वाला दिन कैसा बीतेगा, पता नहीं ना कुछ, इसलिए मनुष्य सोचता है हमें करना है। लेकिन जब मनुष्य की स्थिति बहुत ऊंची हो जाती है, जब वो स्पिरिचुअली बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच जाता है, तब उसे आभास होने लगता है कि सचमुच तुम कुछ नहीं कर रहे हो।
ओके, आपने एक बात कही कि चलिए एक स्मृति यदि आ गई कि ये हूबहू रिपीट हो रहा है ड्रामा, तो ये मैंने कल पहले भी किया था, अच्छे कार्य के लिए मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ कि हाँ कल पहले भी मैंने विजय प्राप्त की थी बुराइयों पे, अब भी मैं प्राप्त करूँगा। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि जो बुरी घटनाएं हमारे साथ घट रही हैं ना, वो हमारे ऊपर ज़्यादा हावी हो जाती हैं कि अरे ये बुरी घटना मेरे जीवन में घटी, इसने मुझे धोखा दे दिया, इसने मुझे परेशान किया, इसकी मृत्यु हो गई, फिर से कल बाद ऐसा ही होगा, तो ये वाली चीज़ ज़्यादा परेशान करती
है। इसमें ये सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि ड्रामा में एक सीरीज है ना, पूरा एक क्रम है, किसी ने मुझे धोखा दिया, उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, तो मेरे किस कर्म का ये परिणाम है। तो बैक में जाकर हम उसे चेंज तो नहीं कर सकते, क्योंकि बैक में जाने का किसी के पास ताकत नहीं है, इसलिए अगला कल्प जब होगा तो फिर से वो क्रम उसी तरह चलता आएगा। हमसे कुछ गलतियां होंगी, उसका परिणाम हमें इस रूप में मिलेगा कि ये गलत कार्य सामने हो गया। तो इसके पीछे एक पूरा सीक्वेंस है, अगर हम पिछले 100 साल के उस सीक्वेंस को जान लें तो हमें पता चल जाएगा कि बिल्कुल हमारी गलती हुई थी, उसका ही परिणाम है, वो अचानक नहीं हो गया, इसलिए वो आपे ही हो जाएगा कल्प के बाद, ऐसा नहीं, वही सीक्वेंस फिर से चलेगा।
तो इसीलिए लोग सोचते हैं कि यदि ये बुरा सीक्वेंस शुरू हो गया है तो इसे चेंज क्या नहीं किया
अभी
जा सकता?
ये है कि अब से आगे का चेंज कर लो।
पहले वाला चेंज नहीं,
पहले वाला तो कोई चेंज कर नहीं, हमने एक मिनट पहले कुछ बोल दिया किसी को, उसे चेंज कैसे करेंगे, वो तो बोल दिया, आगे के हर पल को हम चेंज कर लें तो ये हमारे हाथ में है।
तो इसीलिए मन में प्रश्न बार बार आता है ब्रदर जी, कल या परसों हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो गलतियां होना फिर सुधारना फिर गलतियां होना फिर सुधारना, इससे अच्छा है तो मैं इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाऊं।
हाँ, पर मुक्त होंगे कैसे, एक्टर है ना सभी, अब जब एक बार इस चक्र में आ गए हैं तो बार बार आना ही पड़ेगा, इसे कोई छूट नहीं सकता।
क्या अच्छा अच्छा ही नहीं हो सकता था?
अच्छा अच्छा हो सकता है यदि मनुष्य पहले से ही अच्छे अच्छे कर्म करता है।
बिल्कुल, तो ये बुराइयां फिर से ड्रामा में ये बुराइयां आएंगी, फिर से हम अच्छा करेंगे
और फिर से
बुरा
भगवान को आना पड़ेगा, अगर बुराई ना हो तो भगवान भी क्यों आए, हमारा उससे मिलन भी क्यों हो, तो इन सब के जो पीछे एक सुंदर बात है
जी,
परिणाम कि ये सब हैं इसलिए हमारा प्रभु मिलन होता है। अगर यहाँ सतयुग ही सतयुग होता, सब कुछ अच्छा अच्छा होता, तो भगवान को आने की जरूरत ही न पड़ती।
मतलब धर्म की ग्लानी होना, हमारा गिरना, हमारा पतन होना, ये भी मतलब कल्याणकारी है इस भाव से यदि देखा जाए तो, तभी हमारा उद्धार
और ये सब भी होना ही है
जी,
क्योंकि चक्र सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग इसी क्रम से घूमता है। कलयुग माना हर चीज की वर्स्ट स्थिति, तो अगर वो ना हो तो कलयुग क्यों।
पता जी, लगातार जो हमारे पास अब तक जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, चाहे वो एसएमएस के द्वारा आए हैं या मेल के द्वारा आए हैं, जब हम ये ड्रामा के चक्र की बात करते हैं, ब्रह्मा कुमारी जब ये कहती है कि हूबहू रिपीट होगा, तो बहुत सारे प्रश्न लोगों के उठते हैं। तो मैं आज ये जानना चाहता हूँ आपसे कि इस 5000 साल का जो चक्र है हूबहू रिपीट होता है, हूबहू रिपीट होता है, ये ज्ञान देने से हमें क्या फ़ायदा है? मतलब हम किस रूप में इसे फायदे के रूप में लें, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग इसे परेशान ही हो रहे हैं।
बिल्कुल फायदे के लिए ही लेना चाहिए। इससे हमारे अंदर सोई हुई शक्तियाँ जागृत होती हैं और हमें निश्चिंतता आती है, हम सरल चित्त बनते हैं। मान लो कोई बुरी घटना हो गई और हमें ये याद आया कि ये कल पहले भी ठीक ऐसे ही हुई थी, नथिंग न्यू, तो हम परेशान नहीं होंगे। मान लो बच्चे का कुछ हो गया, परिवार में कुछ हो गया, बिजनेस में कुछ नुकसान हो गया, तो एक मनुष्य ये सोचेगा कि कल पहले भी ऐसा हुआ था, अब भी हो गया, नथिंग न्यू। तो ये नथिंग न्यू का पार्ट हमें फिर से पुनर्जीवित कर देगा, हम उस चीज में पूरी तरह बुरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो जाएंगे, अपने को हताश उदास निराश नहीं कर देंगे, लेकिन पुनः हम जागृत हो जाएंगे। ऐसे ही सबसे अच्छी बात यह है, कल पहले भी हमने विजय पाई थी, अब भी हमारी विजय निश्चित है, क्योंकि कल पहले पाई थी। ये अगर हमें याद रहे तो वो जो विजय पाने की शक्तियां हैं वो जागृत रहेंगी और माया पर हमारी तेजी से विजय होगी। हमें कहीं ऐसा एहसास नहीं होगा कि माया बहुत प्रबल है, हमें हरा देती है।
और जब ये बुरी स्मृतियां सामने आ जाए तो फिर क्या सोचें?
जब बुरी स्मृति सामने आ जाए तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कल पहले भी आई तो थी, पर अब हमें सोचना चाहिए कि इन बुरी स्मृतियों से हमारा भविष्य बुरा हो जाएगा, इसलिए हमें इन बुरी स्मृतियों को अच्छी स्मृतियों में बदल देना है।
बिल्कुल, हमें अपनी दृष्टि को, अपने चिंतन को सकारात्मक रखना है ताकि हम विकास की ओर बढ़ें और इसमें से भी, बुराई से भी अच्छाई लेने की हम कोशिश करें। चलिए, बहुत गहन चर्चा है वैसे भ्राता जी, मैं चाहूँगा फिर कभी जब कभी ऐसे कोई प्रश्न आए तो हम गहराई से इस पर चर्चा करें, क्योंकि लगातार ये बात आती ही रहती है। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान की बात आती है ना, बड़ा ही सूक्ष्म है। कई बार हम अपने वर्तमान बुद्धि के आधार पर ये सोचने, ये निर्णय करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं है, लेकिन कई चीज़ें जो इस सृष्टि चक्र में नुंधी हुई हैं, मैं कहूँगा जो इटर्नल हैं, उन्हें समझने के लिए सचमुच बहुत ज़्यादा बुद्धि और विवेक की ज़रूरत है। क्योंकि हम ये कहते हैं कि परमात्मा ने ये सृष्टि रची, वैसे तो ये अनादि है, जैसी हमने कई बार चर्चा की है, भ्राता जी कहते रहते हैं कि इटर्नल है ये सारी चीज़ें, लेकिन ये इटर्नल चीज़ें भी ऐसी क्यों हैं, कारण और इसके परिणाम पे ये सारी सृष्टि बनी हुई है। यदि इस गहराई पे उतर के हम थोड़ा सा विचार करते हैं तो ज़रूर हम समझ पाते हैं कि पर्दे के पीछे का कल्याण क्या है। हमें बिल्कुल अपने क्या कहें, पेशेंस को बनाए रखना चाहिए, धैर्य को बनाए रखना चाहिए और पर्दे के पीछे के कल्याण को देखने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि उस कल्याण से हमें शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है और जीवन में हम आगे बढ़ पाते हैं। और वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान भी इसीलिए है और परमात्मा भी इसीलिए हैं, क्योंकि उनका एक नाम कल्याणकारी है। यदि उन्होंने कल्याण हमारा ना किया होता तो हम उन्हें कल्याणकारी नहीं कहते। और साथ ही इस विश्व के ड्रामा को भी कल्याणकारी कहा गया है, ड्रामा, यदि आप इसे संधि विच्छेद कर देते हैं तो माँ शब्द आता है और माँ ड्रामा कभी भी किसी का कल्याण मतलब अकल्याण नहीं कर सकती, कल्याण ही करेगी। जैसे माँ की बात हमने शुरुआत की थी, माँ पे ही आज अंत भी कर रहे हैं। कहा जाता है कि एक बार एक यमदूत आ गया घर में, रात में आहट हुई तो बच्चे की आँख खुल गई, और जैसे ही आँख खुली उसने देखा कि सामने यमदूत खड़ा हुआ है। तो बच्चे ने पूछा कि यमदूत जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा कि मैं ना तुम्हारी माँ को लेने के लिए आया हूँ। तो बच्चा बड़ा उदास हो गया, निराश हो गया और वो कहने लगा कि यमदूत जी क्या हम एक सौदा कर सकते हैं, कि आप मेरी माँ की बजाय मुझे ले जाओ। तो यमदूत मुस्कुराया और उसने कहा कि लेने तो मैं तुझे ही आया था, लेकिन तुमसे पहले तुम्हारी माँ ने ये सौदा कर लिया। सी, माँ का दिल कितना बड़ा होता है, श्रेष्ठ होता है, विशाल होता है। तो ड्रामा अर्थात ये विश्व का जो ड्रामा है वो भी हमारे लिए बहुत हितकर है मित्रों। आवश्यकता मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी गहराई से विचार करने की है, समझने की है, तो कल्याण हमें दिखाई देने लगेगा। और वास्तव में समाधान लगातार यही कार्य कर रहा है, आपको प्रकाश दे रहा है, आप निश्चित रूप से इस कल्याण को देख पाएंगे, ऐसा हमें पूरा पूरा विश्वास है। बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।